एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम गोता लगा रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की दुनिया में, और हमारी गाइड है एक किताब, साइकोलॉजी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसे लिखा है गिलियन बटलर और फ्रेडा मैकमैनस ने। ये किताब खास तौर पर उन सबके लिए है जो समझना चाहते हैं कि भाई ये साइकोलॉजी चीज क्या है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इसका क्या लेना देना है, और क्यों ये सिर्फ कॉमन सेंस से कहीं ज्यादा गहरी बात है।
बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी या तो सिर्फ दिमागी बीमारियों की बात करती है,
हाँ, या फिर वो बातें जो हमें पहले से ही पता है।
सही, लेकिन ये किताब इसी सोच को तोड़ती है। ये बताती है कि मनोविज्ञान असल में एक संजीदा विज्ञान है। इसके अपने तरीके हैं, अपनी मेथड्स हैं, और इसका एक मकसद है इंसान के मन और उसके बर्ताव को समझना।
और आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मुझे लगता है खुद को और दूसरों को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है ना?
बिल्कुल सही बात है, बहुत जरूरी।
तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं लेखकों से, जानते हैं कि ये ज्ञान हमें मिल कहां से रहा है।
हाँ, ये जानना अहम है। डॉक्टर गिलियन बटलर और डॉक्टर फ्रेडा मैकमैनस दोनों ही बहुत अनुभवी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं।
अच्छा।
डॉक्टर बटलर ने यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस मतलब NHS में बहुत साल काम किया है, खासकर एंजाइटी यानी चिंता वाले मामलों में। उनका जोर हमेशा इस पर रहा कि जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उन्हें असल जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस।
हाँ, और डॉक्टर फ्रेडा मैकमैनस वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक जानी मानी रिसर्चर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो ऑक्सफोर्ड कॉग्निटिव थेरेपी सेंटर की डायरेक्टर भी रही हैं। उनकी स्पेशलिटी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT और एविडेंस बेस्ड इलाज, मतलब वो तरीके जिनका असर वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है।
तो ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन हुआ, एक तरफ क्लिनिकल अनुभव, लोगों के साथ जमीनी स्तर पर काम।
बिल्कुल, और दूसरी तरफ एकेडमिक रिसर्च की कठोरता, उसका डिसिप्लिन।
हाँ, तो ये दोनों मिलकर थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो गैप होता है ना, उसे भरते हैं।
सही कहा, और उनका नजरिया इसीलिए खास है। वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाते, बल्कि उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वाकई काम करती हैं, जिनका साइंटिफिक बेस है, जैसे CBT।
बिल्कुल, और यही चीज इस किताब को इतना भरोसेमंद और यूजफुल बनाती है। अच्छा, तो अब आते हैं किताब के मेन आइडिया पर। इसका मकसद क्या है, ये क्या कहना चाहती है?
देखिए, जैसा नाम से पता चलता है, ये साइकोलॉजी का एक छोटा सा परिचय है, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्स के लिस्टिंग नहीं है। इसका मेन मकसद है साइकोलॉजी को एक गंभीर एविडेंस बेस्ड विज्ञान के तौर पर पेश करना, और उन आम धारणाओं को चैलेंज करना कि भाई ये तो बस कॉमन सेंस है, या साइकोलॉजिस्ट तो बस लोगों का दिमाग पढ़ते हैं।
तो फिर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या हुआ इसका, मतलब निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल इलनेस या अजीबोगरीब बर्ताव की स्टडी नहीं है, ये उससे कई ज्यादा बड़ा और गहरा विज्ञान है। ये मन, मस्तिष्क और व्यवहार, इन तीनों की जो पेचीदा गुत्थियां हैं ना, उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है।
अच्छा,
किताब के हिसाब से देखें तो मनोविज्ञान की भूमिका है हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों की एक वैज्ञानिक समझ देना। और इसका लक्ष्य
क्या है?
लक्ष्य है इस समझ का इस्तेमाल करके हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना, और यहाँ तक कि जो समाज की बड़ी चुनौतियां हैं उन्हें समझने और सुलझाने में भी मदद करना।
तो ये एक तरह से बायोलॉजी और सोशल साइंस के बीच ब्रिज का काम करता है।
बिल्कुल सही, एक पुल की तरह।
दिलचस्प। तो ये किताब हमें इस सफर पर कैसे ले जाती है, क्या कवर करती है?
ये एक पूरी यात्रा है। शुरू होती है ये समझाने से कि साइकोलॉजी है क्या और साइकोलॉजिस्ट सोचते कैसे हैं, मतलब उनका साइंटिफिक तरीका क्या है।
ठीक है।
फिर बात आती है मन के हार्डवेयर की, यानी हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। फिर सॉफ्टवेयर पर, जैसे हम दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे याद रखते हैं, कैसे सोचते और महसूस करते हैं। इसके बाद ये हमारे डेवलपमेंट, हम पर समाज का क्या असर पड़ता है, और जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन सब पर बात करती है, और आखिर में ये बताती है कि साइकोलॉजिस्ट असल में मदद कैसे करते हैं।
ठीक है, तो चलिए इस यात्रा के कुछ अहम पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट सोचते कैसे हैं, ये वाकई कॉमन सेंस से अलग कैसे है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि साइकोलॉजी कॉमन सेंस से बहुत अलग है। हमारी रोजमर्रा की जो समझ होती है ना, वो अक्सर हमारे अपने बायस, हमारी अधूरी जानकारी पर टिकी होती है।
हाँ, सुधी सुनाई बातें भी होती हैं।
बिल्कुल, जबकि साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करती है, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, हाइपोथेसिस बनाना, एक्सपेरिमेंट्स करना और फिर सबूतों के आधार पर नतीजे निकालना।
ये सिर्फ अंदाजा लगाने या मुझे ऐसा लगता है वाली बात नहीं है।
मतलब जैसे एक डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट करता है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट मन और व्यवहार को समझने के लिए अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल वैसा ही। मिसाल के तौर पे, वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या कोई खास तरीका, जैसे पढ़ने की कोई नई टेक्निक, वाकई मेमोरी इम्प्रूव करती है या नहीं।
अच्छा,
या फिर वो कोरिलेशनल स्टडीज करते हैं ये देखने के लिए कि क्या दो चीजें आपस में जुड़ी हैं, जैसे क्या ज्यादा स्क्रीन टाइम से नींद कम होती है। लेकिन यहाँ किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है, कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं है। मतलब दो चीजें साथ साथ हो सकती हैं, पर यह जरूरी नहीं कि एक की वजह से ही दूसरी हो रही हो। ये तो बहुत ही अहम नुक्ता है, खासकर आजकल जब इतनी इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से आ रही है। ये समझना कि किस दावे का साइंटिफिक आधार है और कौन सा सिर्फ अटकल है। अच्छा, इसके बाद किताब मन के बायोलॉजिकल बेसिस यानी ब्रेन पर आती है।
हाँ, अगला पड़ाव है हमारा कमाल का ब्रेन। किताब बताती है कि हमारा हर ख्याल, हर एहसास, हर याद, उसका एक फिजिकल बेसिस हमारे दिमाग में है। ये न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के जटिल नेटवर्क की बात करती है, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की बात करती है, जैसे इमोशंस के लिए एमिग्डाला, मेमोरी के लिए हिप्पोकैम्पस और न्यूरोट्रांसमिटर्स जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं।
इसमें कोई दिलचस्प उदाहरण भी दिया है क्या?
हाँ, फिनियस गेज का मशहूर केस है। एक रेल रोड वर्कर था जिसके सिर में एक लोहे की रॉड आर पार हो गई थी। वो बच तो गया, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई। जो शांत आदमी था वो एकदम चिड़चिड़ा गुस्सैल हो गया। ये केस दिखाता है कि ब्रेन और हमारी पर्सनैलिटी कितने गहरे जुड़े हुए हैं।
सच में, और ये हमें अगले टॉपिक पर ले आता है, परसेप्शन। हम दुनिया को समझते कैसे हैं?
धारणा यानी परसेप्शन। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं और समझ लेते हैं।
हाँ, ऐसा ही लगता है।
पर किताब कहती है कि ये इतना सीधा है नहीं। हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, वो बाहर की दुनिया से रॉ डेटा यानी सेंसेशन इकट्ठा करती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उस डेटा को एक्टिवली ऑर्गेनाइज करता है, उसकी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन करता है और उसे मीनिंग देता है। ये है परसेप्शन।
अच्छा, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है।
हाँ, एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिव प्रोसेस है। हम दुनिया को सिर्फ पैसिवली रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसे इंटरप्रेट करते हैं अपनी उम्मीदों, अपने पिछले अनुभवों, अपने ध्यान, इन सब के आधार पर।
इसका कोई उदाहरण? जैसे
ऑप्टिकल इल्यूजन सोचिए, जैसे वो तस्वीरें जिनमें आप दो अलग अलग चीजें देख सकते हैं, या सीधी रेखाएं टेढ़ी नजर आती हैं।
हाँ हाँ, वो नेकर क्यूब या मुलर लायर इल्यूजन।
बिल्कुल, वो यही दिखाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली इंटरप्रेट कर रहा है और कभी कभी वो धोखा भी खा सकता है। ये हमें अगले अहम एरिया पर लाता है, सीखना, सोचना और महसूस करना।
हाँ, लर्निंग, थिंकिंग, फीलिंग, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एकदम कोर हिस्सा है। सीखना, याद रखना, फैसले लेना।
बिल्कुल, किताब लर्निंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताती है, जैसे पावलोव के कुत्तों वाला क्लासिक एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग,
घंटी बजने पर लाराना।
सही।
या स्किनर का सिद्धांत कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। मेमोरी के बारे में ये बताती है कि कैसे इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है।
और सोचने के बारे में, क्या हम हमेशा लॉजिकली सोचते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब बताती है कि हम अक्सर मेंटल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये केस तो होते हैं, पर इनमें गलतियों की गुंजाइश रहती है।
अच्छा, और हम सब कॉग्निटिव बायसेस के शिकार होते हैं, जैसे कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती हैं, और जो नहीं खाती उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
ओहो, ये तो बहुत होता है। हम वही न्यूज या पोस्ट ज्यादा पढ़ते हैं जो हमारी सोच से मिलती हो।
बिल्कुल सही, और यहीं पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT का सिद्धांत जुड़ता है। किताब समझाती है कि हमारे विचार, थॉट्स, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स और हमारे व्यवहार, बिहेवियर्स, ये तीनों आपस में गहरे जुड़े हुए हैं, TFB ट्रायंगल। अगर हम अपने सोचने के नेगेटिव या अनहेल्पफुल पैटर्न को पहचान कर बदल सकें, तो हम अपनी भावनाओं और अपने एक्शंस को भी बदल सकते हैं। ये साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल लक्ष्यों में से एक बहुत अहम लक्ष्य है।
ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद किताब हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखती है, सही? हाँ, ये भी एक जरूरी पड़ाव है। हम अकेले टापू पर तो रहते नहीं, समाज में रहते हैं और दूसरे लोग हमें लगातार प्रभावित करते हैं। किताब कुछ क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करती है, जैसे ऐश का प्रयोग,
जिसमें वो लाइनों की लंबाई वाला था।
हाँ वही, जिसमें लोगों ने सिर्फ इसलिए गलत जवाब दिया क्योंकि ग्रुप के बाकी लोग वही जवाब दे रहे थे। इसे कन्फॉर्मिटी कहते हैं।
और मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट भी है शायद, शॉक वाला।
हाँ, मिलग्राम का ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, जो दिखाता है कि कैसे आम लोग भी किसी अथॉरिटी फिगर के कहने पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने को तैयार हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऐसा करने को कहा गया है।
डरावना है ये तो।
है, ये प्रयोग दिखाते हैं कि अक्सर हमारे बर्ताव पर हमारी पर्सनालिटी से ज्यादा सिचुएशन यानी हालात का असर होता है। पावर ऑफ द सिचुएशन, ये समझना सोशल बिहेवियर को समझने में बहुत मददगार है।
ये थोड़ी चिंताजनक बात भी है कि हालात हमें कितना बदल सकते हैं। और आखिर में किताब इस पर आती है कि जब चीजें ठीक नहीं चलती, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तब साइकोलॉजी कैसे मदद करती है।
बिल्कुल, ये चैप्टर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन पर बात करता है, लेकिन साइंटिफिक नजरिए से। ये बायोसाइकोसोशल मॉडल पर जोर देता है।
बायोसाइकोसोशल मतलब?
मतलब इन समस्याओं के पीछे बायोलॉजिकल जैसे जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री, साइकोलॉजिकल जैसे सोचने का तरीका, स्ट्रेस से निपटना, और सोशल जैसे गरीबी, अकेलापन, सपोर्ट सिस्टम, तीनों तरह के फैक्टर्स होते हैं।
अच्छा, ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है।
हाँ, और फिर ये बताता है कि साइकोलॉजिस्ट मदद कैसे करते हैं, खासकर साइकोथेरेपी के जरिए। यहाँ फिर से CBT का जिक्र आता है क्योंकि ये कई समस्याओं के लिए एक बहुत इफेक्टिव एविडेंस बेस्ड तरीका है।
तो ये किताब वाकई साइकोलॉजी के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करती है, बेसिक साइंस से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक।
हाँ, और ये सब करते हुए ये लगातार अपने मेन मैसेज पर लौटती है कि साइकोलॉजी की भूमिका है साइंटिफिक समझ देना और लक्ष्य है इंसानी बेहतरी, ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ावा देना।
तो इस पूरी बातचीत का अगर निचोड़ निकालें तो इस किताब से वो कौन से मुख्य संदेश हैं जो हमें याद रखने चाहिए?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी, साइकोलॉजी एक विज्ञान है, सिर्फ कॉमन सेंस या ओपिनियन नहीं। ये अटकलों पर नहीं, सबूतों पर आधारित है। आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले दौर में ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंटिफिकली टेस्टेड जानकारी ही भरोसेमंद होती है।
बिल्कुल। दूसरा शायद ये कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसी हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। हमारा मन एक एक्टिव फिल्टर की तरह है। इसे समझना हमें थोड़ा ज्यादा हम्बल और दूसरों के लिए ज्यादा एम्पैथेटिक बना सकता है, क्योंकि उनका नजरिया वाकई हमसे अलग हो सकता है।
सही अरो। तीसरा, हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। ये CBT का कोर है और ये हमें बदलाव की एक चाबी देता है। अगर हम अपने सोचने के पैटर्न को बदलें तो हम कैसा महसूस करते हैं और क्या करते हैं उसे भी बदल सकते हैं। जैसे परीक्षा का स्ट्रेस है, मैं फेल हो जाऊंगा सोचने की जगह, मैंने तैयारी की है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, सोचने से वाकई फर्क पड़ता है।
हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। और चौथा, सिचुएशन की पावर को कम मत आंको। अक्सर लोगों का बर्ताव उनकी पर्सनैलिटी से ज्यादा उनके हालात या सोशल प्रेशर से प्रभावित होता है। ये हमें दूसरों को जज करने में थोड़ी नरमी बरतने की याद दिलाता है। भारत में हम सब जानते हैं कि सामाजिक दबाव कितना रियल होता है।
ये सारे मुख्य संदेश साइकोलॉजी के रोल यानी समझ देना और गोल यानी बेहतर बनाना दोनों को अच्छे से दिखाते हैं।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें या कोट्स हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे एक मेन आइडिया है।
हाँ, जैसे ये कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अक्सर उन बातों को गलत साबित कर देती है जो साफ जाहिर या ऑब्वियस लगती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें सबूत क्यों चाहिए, क्यों हमें अपनी गट फीलिंग पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए।
और एक और जो परसेप्शन वाले हिस्से से जुड़ा है, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है। ये हमारी सब्जेक्टिविटी को, हमारे नजरिए के फर्क को उजागर करता है।
और वो CBT वाला आइडिया, अक्सर घटनाएं नहीं बल्कि उनकी हमारी इंटरप्रिटेशन हमें परेशान करती है। ये दिखाता है कि हमारी इमोशनल रिएक्शंस पर हमारा कितना कंट्रोल हो सकता है अगर हम अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान दें, उन पर काम करें।
ये आइडियाज सिर्फ किताबी नहीं है, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा कनेक्शन है। तो इन विचारों को हम असल जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं?
कई तरीकों से। देखिए, पर्सनल लेवल पर हम अपने सोचने के तरीकों पर ध्यान दे सकते हैं। क्या हम किसी कॉग्निटिव बायस के शिकार हो रहे हैं? जैसे क्या हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं जो हमारी बात को सही साबित करे? अपने थॉट्स को चैलेंज करना सीखकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझने और मैनेज करने के लिए CBT के प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं, जैसे किसी मुश्किल सिचुएशन में अपने आप से बात करने का तरीका बदलना, जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं।
रिश्तों में भी ये काम आ सकता है ना?
बिल्कुल। ये समझना कि दूसरे इंसान का नजरिया अलग हो सकता है एम्पथी बढ़ाता है और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर से बचना।
वो क्या होता है?
मतलब दूसरों के बर्ताव को फौरन उनकी पर्सनैलिटी पर डाल देना। ये तो है ही ऐसा, बजाय ये सोचने के कि शायद हालात का असर हो। जैसे अगर कोई ट्रैफिक में कट मारता है तो उसे बदतमीज कहने से पहले ये सोचना कि शायद कोई इमरजेंसी हो, इससे थोड़ी आलोचना कम होती है।
हाँ, ये जरूरी है।
और समाज के लेवल पे साइकोलॉजी हमें मीडिया में आने वाले दावों का क्रिटिकल मूल्यांकन करने में मदद करती है। सोशल इश्यूज जैसे प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन या क्यों लोग ग्रुप्स में अजीब तरह से बिहेव करते हैं, इनको समझने के लिए एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देती है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे अहम सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे असरदार बात CBT के पीछे का वो सरल लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत है कि हमारे विचारों में बदलाव लाके हम अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी को कितना बदल सकते हैं। ये एक उम्मीद देने वाला आइडिया है। और आपके लिए?
मेरे लिए मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। ये जानना कि सामान्य अच्छे भले लोग भी हालात के दबाव में अथॉरिटी के कहने पर कितना गलत काम कर सकते हैं, ये हमें सत्ता और अधिकार के प्रति हमेशा अलर्ट रहने की याद दिलाता है। और साथ ही ये किताब साइकोलॉजी को एक जटिल लेकिन बेहद आकर्षक विज्ञान के रूप में पेश करती है, जो खुद को और इंसानी फितरत को समझने की कुंजी देता है।
कुल मिलाकर ये किताब साइकोलॉजी की भूमिका को अच्छे से सामने रखती है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स की स्टडी नहीं है, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने की एक साइंटिफिक कोशिश है। और इसका लक्ष्य भी साफ है, उस समझ का इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी जीने और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करना।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो शायद इस चर्चा में सीधे तौर पर नहीं आया। ये समझना कि हमारा मन वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है निश्चित रूप से उपयोगी है, पर क्या जीवन में ऐसे क्षण नहीं आते जब तर्क से ज्यादा अंतर्ज्ञान या दिल की आवाज सुनना जरूरी हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए इकतर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।